मेरा कुछ ऐसा मानना है कि यह समय हमारे लिए भी अनुकूल समय है कि ग्रहण और त्याग का जो विवेक हमें परंपरा से मिला है उसकी कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम यह तय करें कि हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों का कितना कुछ आगामी सदी में जाना चाहिए और क्या कुछ है जिसे प्रणम्य मानकर हम जाती हुई सदी के पास रहने दें। निर्णय करना सरल नहीं है, किंतु अपने विवेक का इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं। परंपराएं इसी तरह आगे बढ़ा करती हैं, ऐसा हर युग में हुआ है, हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। कौन सा पाथेय होगा जिसका संबल लेकर हम आगामी सदी की लंबी यात्रा को निरापद आश्वस्त भाव से तय करेंगे कर सकेंगे। जितनी कठिन चुनौतियां सामने हैं, उतना ही कारगर और आश्वस्त मूलक पाथेय भी होना चाहिए। तमाम कुछ के साथ कबीर और उनकी कविता भी इस बिंदु पर यदि हमारी चिंता के दायरे में आए तो हर्ज क्या है। स्वयं कबीर ने अपने समय में अपनी यात्रा शुरू करते हुए ग्रहण और त्याग के अपने इस विवेक का इस्तेमाल किया था। हमारा ऐसा न करना कबीर की बात करते हुए भी कबीर को अमान्य करना होगा। सचमुच अपने समय में कबीर ने परंपरा से चले आते हुए बहुत कुछ को अस्वीकार किया था। आचार्य द्विवेदी ने यह बहुत सही लिखा है कि कबीर अपने समय में अस्वीकार का बहुत बड़ा साहस लेकर आए थे। इस बिंदु पर व्यवस्था और उसके प्रभुओं की सोच के समानांतर चलती हुई अस्वीकार, असहमत, डिसेंट या प्रोटेस्ट की एक दूसरी परंपरा से उन्होंने अपने को जोड़ा था। कविताई के सारे आयामों पर तो नहीं, किंतु उसके एक आयाम पर पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथों की तरह उनकी कविता भी असहमत की डिसेंट या प्रोटेस्ट की कविता है। यह असहमत या प्रोटेस्ट ही कबीर और उनकी कविता को समय का एक लंबा अंतराल पार करते हुए हमारे अपने समय से जोड़ती है, उसे समकालीन बनाती है। कबीर को हमारा हम सफर बनाकर यह असहमत या प्रोटेस्ट ही कबीर की उनकी कविता को समय का एक लंबा अंतराल पार करते हुए हमारे अपने समय से जोड़ती है, उसे समकालीन बनाती है। कबीर को हमारा हम सफर इस बिंदु पर मार्गदर्शक भी, इसी बिंदु पर वह हमें आधुनिक भी बनाती है। जरूरी है कि ग्रहण और त्याग के अपने विवेक की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम कबीर और उनकी कविता के इस पहलू को अपनी निगाह के दायरे में रखें। किंतु आचार्य द्विवेदी ने जितनी मुखरता से कबीर के अस्वीकार के साहस को रेखांकित किया है, उतने ही गुपचुप होकर उन्होंने उनके स्वीकार को विसर किया है। स्पष्टतः तो उन्होंने कहा ही नहीं कि कबीर में परंपरा का जितना अस्वीकार है उससे कहीं अधिक उसका स्वीकार है। विश्व दृष्टि हो अथवा परंपरागत दार्शनिक चिंतन और उनसे अनुकूलित सोच के दीगर आयाम और रक्त के साथ घुले मिले चले आते तमाम संस्कार, ये सब कबीर के स्वीकार का अंश हैं। कबीर की भक्ति भावना भी इन्हीं में से एक है। कदाचित आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार वाले इस अंश को मुखरता के साथ नहीं कहा कि कबीर के व्यक्तित्व और उनकी कविता के विद्रोही तेवर बरकरार रखते हुए भी वे स्वीकार वाले इस अंश की मदद से उनका और उनकी भक्ति कविता का संबंध सगुण भक्तों और उनकी कविता से बनाए रहे। कबीर भी सधे रहे और तुलसी भी। निर्गुण तथा सगुण भक्ति के बीच अंतः सूत्र इसी स्वीकार वाले पहलू के तहत ही चुने जा सकते थे और आचार्य द्विवेदी ने वही किया भी है। दोनों के बीच विभेद पैदा करने वाली अवतारवाद तथा कुछ दीगर बातों को हाशिए पर डालते हुए उन्होंने प्रेमा पुमर्थो महान की अगुवाई में सदगुण नाम स्मरण भक्ति आदि के आधार पर दोनों प्रकार के भक्ति मार्गों के बुनियादी एकता का प्रतिपादन किया। इसी नाते उन्होंने कबीर की शिनाख्त भी तत्वतः और मूलतः एक भक्त के रूप में की है। संतों भक्ति सतो गुरु आनी, उनकी भक्ति को उन्होंने जिस तरह विशद किया है उस जमीन पर सगुण भक्ति भी उतनी ही प्रशस्ति का परिचय देती है। तुलसी और कबीर प्रशस्त भक्ति की इस जमीन पर एक साथ एक ही ऊंचाई पर खड़े हैं। भक्ति की यह सामान्य भावभूम दोनों भक्ति धाराओं को जोड़ देती है, किंतु जैसा हमने कहा कबीर और उनके निर्गुण भक्ति का यह जो अस्वीकार वाला पहलू है वह उन्हें एक अलग विशिष्ट शिनाख्त देता है। इस बिंदु पर दोनों भक्ति धाराओं की समरसता या समरूपता खंडित होती है। यहाँ तक कि वे एक दूसरे के विरोध में खड़ी दिखाई देती हैं। कबीर के इस अस्वीकार का संबंध उनके समाज दर्शन से है, उसका संबंध उनकी सामाजिक सोच और उनके जिए भोगे देखे सुने के साथ मूर्त होने वाले उनकी कविता की सामाजिक अंतर्वस्तु से है। यह सामाजिक अंतर्वस्तु उनकी कविता में बड़े सारगर्भित सामाजिक निहितार्थों को लेकर आई है। वह हमारे समाज इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को रोशन करती है और उन पन्नों पर अंकित इबारत के बीच से कुछ ऐसी दहकती हुई सच्चाइयों को सामने लाती है जिनकी आंच को सह पाना हर आदमी के बूते की बात नहीं है। जैसा हमने कहा, इन सामाजिक निहितार्थों के बरक्स निर्गुण और सगुण भक्ति की धाराएं निर्गुण और सगुण भक्ति की कविता ही एक दूसरे से अलग थलग नहीं होती। वह भक्ति का आंदोलन भी दो फाक हो जाता है जिसे प्रायः एकमत से मध्य युग की एक महान और क्रांतिकारी सांस्कृतिक घटना के रूप में सराहा गया है। कहना न होगा कि किस असंगत विषमता और अंतर विरोध के बीच भक्ति के आंदोलन में स्वतः उससे जुड़े ख्यात आचार्यों द्वारा ही डाले गए थे। इस तथ्य की नोटिस लेनी चाहिए कि मनुष्य मात्र की एकता और समानता की जो उद्घोषणाएं ऊर्ध्वबाह होकर इन आचार्यों ने की थी, उस एकता का संबंध महज भक्ति और उपासना के क्षेत्र तक ही था। समाज में विद्यमान विषमता भेदभाव और उसके स्रोतों से उसका कोई नाता नहीं था। रामानुजाचार्य की व्यवस्था थी कि समस्त भक्तगण भक्तजन भजन तो साथ साथ बैठकर करेंगे, परंतु भोजन वे अलग अलग पंक्तियों में ही ग्रहण करेंगे। कहा जाता है कि आगे चलकर रामानंद ने इस नियम की जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु आचार्य शुक्ल ने जोर देकर कहा है कि कर्ण व्यवस्था के प्रति रामानंद का दृष्टिकोण किंचित भी अन्यथा नहीं था। वह धर्म शास्त्रों में दी गई व्यवस्था की पूर्ण संगति में था। कबीर की कविता की जो सामाजिक अंतर्वस्तु है, उसमें विषमता मूलक चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता और उसे बरकरार रखने वाली शक्तियों की भेदभावपूर्ण दृष्टि अपनी समूची त्रासद परिणतियों के साथ मूर्त हुई है। उसे देखने पर और उसके बरक्स आगे की सगुण भक्ति कविता को देखने पर सगुण संतों और सगुण भक्तों की समाज विषयक सोच का जो अंतर दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो जाता है, उसे अलग से रेखांकित करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। यह भक्ति आंदोलन का, उससे जुड़ी भक्ति की धाराओं का और उससे उपजी कविता का सच है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे क्षुब्ध और परेशान जरूर हुआ जा सकता है। कबीर का समूचे भक्ति आंदोलन में वैशिष्ट इसी बिंदु पर उभरता है। इसी बिंदु पर वे अपनी सारी तेजस्विता, जैसा कहा, अपनी सारी आधुनिकता और अपनी समूची अहमियत के साथ हमारे सामने आते हैं। हमारे अपने समय के जीवंत सरोकारों से जुड़े हुए हमारे समकालीन बनते हैं। निर्गुण संतों की इस खरी पहचान को डाइल्यूट करना, उसे हाशिए पर डालना, एक ज्वलंत सच्चाई को हाशिए पर डालना होगा। कबीर की कविता का यह पहलू ही हमारे समय और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कबीर की सबसे मूल्यवान विरासत उनकी वसीयत है। कबीर अपने व्यक्तित्व के दोनों विपरीत ध्रुवों के साथ अपनी कविता के इसी आयाम पर अविरोधी बनकर सामने आते हैं, विरोधों के सामंजस्य का साक्ष्य बनकर। विषमता मूलक अन्यायी और अमानवीय सामाजिक व्यवस्था और उसे बनाए और बचाए रखने की कोशिश करने वाली ताकतों पर जितना सात्विक उनका क्रोध है, यातनाग्रस्त विराट मनुष्यता के दुख, क्लेश, पीड़ा, विषाद, अवसाद के प्रति उतनी ही प्रशस्त, उतनी ही गहन और उतनी ही तरल यहाँ उनकी मानवीय करुणा है। जितनी आक्रामकता के साथ वे समाज और धर्म की पाखंडी शक्तियों, पंडित मुल्लाओं, काजी मुकदमों पर टूटे और बरसे हैं, उतने ही संवेदनशील होकर वे नरक की नियत झेलती मनुष्यता के प्रति मुखातिब हुए हैं। वैसे आक्रामकता और अखड़ता कबीर के स्वभाव में नहीं थी। बुनियादी तौर पर वे नितांत कोमल, शांत, करुणार्द्र और तरल संवेदना के संत थे। जरूरी है कि आक्रामकता और अखड़ता की सात परतों के भीतर बुनियादी रूप में विद्यमान उनकी इस मानवीय करुणा को समझा जाए। व्यंग्य का बीज भाव सदैव यह मानवीय करुणा ही हुआ करती है। करुणा की इसी बुनियाद पर व्यंग्य खड़ा होता है, खड़ा हो पाता है। यह वाल्मीकि की करुणा ही थी जो कामलिप्त क्रौंच मिथुन में से एक केवट पर साप बनकर बहेलिए पर बरसी थी। यातनाग्रस्त मनुष्यता को कबीर ने देखा ही नहीं था, उनके क्लेश और दुख दाह को उसके एक अंश के रूप में जिया भोगा भी था। उनकी यह उनकी गरोक्ति नहीं है जब वे अपने प्रतिपक्षी को से कहते हैं कि मेरा और तेरा मन कैसे होगा जब एक जबकि तू पोथियों में लिखी बात कहता है मैं आंखों देखी हकीकत का बयान कर रहा हूँ। कबीर देख रहे थे कि जैसे सारा संसार धू धू करते हुए जल रहा है, अपनी अपनी आग में लोग सुलग और धुंधला रहे हैं। कबीरा कोई ना मिला जासो रही लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। सांसारिकों की यह हालत कबीर को विक्षुब्ध और परेशान करती है। कहीं तो प्रेम का सोता फूटता दिखाई दे, हर तरफ संवेदन शून्यता, स्वार्थ और अहंकार, आपाधापी और लूट खसोट। पोथी ज्ञान से ये सांसारिक आग नहीं बुझ सकती, जिसके लिए तो प्रेम ही चाहिए। पोथी ज्ञान बिना प्रेम भाव के आदमी को ईंट और पत्थर बना देता है। इस हकीकत को वे देख ही चुके थे और देख भी रहे थे। पढ़ पढ़ के पाथर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कबीरा जा पर प्रेम की पड़ी न एक औ छींट। संसार के सारे पोथी ज्ञान को कबीर प्रेम के ढाई आखर में तौल देते हैं। खोई हुई आदमियत की तलाश और उसकी बहाली को लेकर ही तो कबीर ने लुकाठी हाथ में लेते हुए सरे बाजार लोगों को गुहा था कि कोई तो हो जो अपना घर फूंक कर उनके साथ चले। वे तो अपना शीश कटाकर देहरी में धर ही आए थे। कोई और भी तो हो जो उनका इस मायने में बगलगीर बने। हम जानते हैं कि आजीवन कबीर अकेले ही चले, उनके साथ कोई नहीं आया। जब घर जोड़ने की माया लोगों पर हावी हो तो कौन घर फूंक कर उनके साथ आता। खा पीकर सुख की नींद सोने वाले समाज को वे रात रात भर जाग कर रोते हुए जगाने का उपक्रम करते रहे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कहाँ है कबीर का अखड़पन और उनकी आक्रामकता। कबीर यहाँ बहुत विक्षुब्ध, तरल, करुणार्थ और पारदर्शी हैं। और वस्तुतः कबीर हैं भी यही। क्या है कबीर का यह जागना और रोना, क्या है उनकी व्यंजनाएं। सोता हुआ आदमी सपने देखता है और जागा हुआ आदमी सामने पसरी हुई वास्तविकता। कबीर के समय और समाज का जो यथार्थ था उसे देखकर वे रो ही सकते थे, सो वे रोए। दूसरों को भी जगाने का उपक्रम करते रहे। हमारे समय में कभी भारतेंदु ने भी देश दशा से विक्षुब्ध हो सोए भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया था, उन्हें अपने साथ रोने का न्योता दिया था। यह आधुनिक युग के नवजागरण की वेला थी। आओ सब मिलकर रोवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कबीर सरल कहते हैं किंतु अतिशय व्यंजक और वेधक। कबीर अपने समय के नितांत धार्मिक व्यक्ति थे, सच्चे अर्थों में संत। नितांत धार्मिक होने के नाते ही वे नितांत सेक्युलर थे। उन्होंने धर्म के मर्म को जाना था और उसे आदमियत, पर दुख कातरता, परहित सेवा, निर्मल अंतकरण, सदाचार, ईमानदारी और परिश्रम की कमाई के रूप में परिभाषित किया था। बाध्याचार और कर्मकांड उनके नाते धर्म नहीं, धर्म से जुड़े पाखंड थे। इसी नाते उन्होंने इन पर वज्र प्रहार किया। अपने को उन्होंने ना हिंदू ना मुसलमान कहा। वे थे भी यही। हिंदुओं की हिंदुआई और तुर्कों की तुर्काई को वे देख चुके थे। वे आदमी ही रहना चाहते थे, हिंदू या तुर्क नहीं। आदमी रहकर वे उसे आदमी के रूप में ही पहचानना चाहते थे। उसकी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय, वर्ण आज के आधार पर नहीं, आदमी की आदमी के रूप में शिनाख्त ही सेक्युलरिज्म है। पंडित और मुल्लाओं से जिन्होंने पूछा कि यदि भगवान का वास मंदिर में है और खुदा का मस्जिद में, तो जहां मंदिर और मस्जिद नहीं है वहां किसकी ठुकराई है। उलटवासियां उन्होंने साधारण जनता को अपने ज्ञान से आतंकित करने के लिए नहीं लिखी। उनका लक्ष्य पोथी ज्ञान से दबे पंडित थे, जिनके बीच कबीर को रहना और जीना था। जाहिर है कि उनकी उलटवासियों के अर्थ पोथियों में नहीं थे, और पंडितों की नगरी काशी का कोई भी पंडित उनका अर्थ करने में समर्थ नहीं था। पंडितों के अहंकार को कबीर की ये उलटवासियां तोड़ती हैं, उनके सारे ज्ञान की पोल खोल देती हैं। कबीर ने लंबा आयुष्य पाया। वे जब तक काशी में रहे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ रहे, गिड़गिड़ाकर और घिघियाकर वे नहीं जिए। भीख उन्होंने नहीं मांगी, वे मेहनत करते हुए, काम करते हुए जिए। वे पीठाधीश संत नहीं, हम कह चुके हैं कि कामकार संत थे। जो कुछ उन्होंने कहा उसे आचरित किया। उनकी कथनी और करनी अलग नहीं रही। उन्होंने जीवन भर काशी में रहे और मरने का समय जानकर मुक्तिदायिनी काशी को छोड़ जानबूझकर मरने के लिए मगहर गए, जिसके बारे में शास्त्रों का कथन है कि मगहर में मरने वाले को अगले जन्म में सुअर की निकृष्ट यौन मिलती है। पंडितों और शास्त्रों को मुंह बिराते हुए और लोग को सावधान करते हुए मगहर जाते हुए वे कह गए, लोका तुम हो मत के भोरा, जो काशी मंतजे कबीरा, तो रामय कौन निहोरा, का काशी का मगहर उसर, हृदय राम जो प्यारा। अर्थात लोगों तुम भोले हो, काशी में रहकर यदि मुक्ति मिली तो इसमें राम का क्या, वह तो होती ही है। यदि सचमुच मेरे हृदय में राम है तो मैं काशी में मरूं, मगहर उसर कहीं भी मरूं, मेरा राम मुझे उबार लेगा। ऐसी आस्था थी कबीर की अपने राम पर। कबीर का अस्वीकार का पहलू कितना सारगर्भित, कितना आधुनिक और कितना तेजस्वी है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। कबीर की सारी कविताई का वह सबसे भास्वर पहलू है। हमारे लिए, हम जो अपने समय को और आने वाले समय को अच्छी तरह जीना चाहते हैं, कबीर आजीवन शास्त्र और शास्त्रज्ञों से लड़े, लोक से जुड़े होते हुए भी वे लोक से भी लड़े और उसके अंधविश्वासों के खिलाफ, उसकी रूढ़ियों के खिलाफ। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि उनके बाद मठ और पंथ बने, किंतु वे बने। वहाँ उनके प्रति जिस भक्ति का पल्लवन हुआ, जिसकी परंपरा चली, वह कितना कबीर के किए और कहे के अनुरूप है, इसे मठ और पंथ वाले ही समझ और समझा सकते हैं। किंतु कबीर के प्रति भक्ति भाव को कर्मकांडों और बाह्याचारों में बांधना, कबीर के नाम पर कबीर के खिलाफ कबीर को खड़ा करना है, इतना जरूर कहा जा सकता है। कबीर की कविताई को लेकर भी शुरू से सवाल उठाए जाते रहे हैं। हम कह चुके हैं कि आचार्य शुक्ल ने तो उनकी वातियों को कविता ही नहीं माना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा कहते हुए खारिज किया। आचार्य द्विवेदी ने उन्हें उनकी भक्ति का बाई प्रोडक्ट कहा है, घलुआ माल और कविता के रूप में उसकी सराहना की है, उसे स्वीकृति दी है। कबीर ने स्वतः अपने कहे हुए को कविता या गीत नहीं माना है, यह जिन जानो गीत रे। कबीर ही क्या, कवि होने का दावा करते हुए तो किसी भी संत या भक्त ने कविता नहीं लिखी। अपने आराध्य के प्रति उन्होंने जो निवेदन किया, लोक ने उसे कविता ही नहीं, उच्च स्तर की कविता माना, और यह और बात है। फिर कबीर का अपना जीवन और परिवेश भी क्या था कि वे कविताई का दावा करते। उन्होंने तो मसी और कागज छुआ भी नहीं था, उन्हें अपनी विरासत से भी कविता जैसा कुछ भी नहीं मिला था। कवि कर्म के लिए जो संस्कार चाहिए, वे भी उनमें कहां थे। किंतु कबीर ने संसार को एक खुली किताब की तरह जरूर पढ़ा और धोखा था। अनुभव की एक विपुल राशि अपने जिए भोगे और देखे सुने के आधार पर अर्जित की थी उन्होंने, जीवंत और बेधक अनुभव की राशि। वाणी का वरदान उनके पास था, बेधक वाणी, दिल और दिमाग के आर पार हो जाने वाली धारदार वाणी। लोक ने उन्हें शब्द दिए थे और उन शब्दों को धार भी दी थी, उसे कह सकने का साहस उन्होंने किया था। यही अनुभव उनकी वाणी में, उनके शब्दों में, लोक के लहजे में ढल कर सामने आए हैं। पंडितों ने उसे कविता न माना हो, लोक ने उसे कविता माना और उसे आज तक गाते हुए चला आ रहा है। उनके निर्गुण करोड़ों कंठों से फूट रहे हैं और लोक को ऊर्जा, संतोष और तृप्ति दे रहे हैं। आश्चर्य होता है कि नागमती की आर्त पुकार पर रेस जाने वाले जायसी की प्रेम की पीर और घनानंद की मौन मध पुकार दर मुग्ध होने वाले, उसे सुन सकने वाले आचार्य शुक्ल कबीर की विरहिणी की उस तड़प को नहीं देख और समझ सके, उसके आर्त वाणी और उसके भीतर से छलकती उस कविता को नहीं पहचान सके जो कबीर की साखियों और पदों में बार बार सुनाई पड़ती है अपनी संपूर्ण बेधकता और मार्मिकता में। कई विरहीन हो मीच दे कई आपा दिखलाए आठ पहर का दाझड़ा मोसो सहया न जाए। वे कबीर की माधुर्य भक्ति के भीतर गूंजती लोक जीवन की उस लय और ताल से भी बेखबर रहे जो लोक गीतों की पूरी मिठास के साथ लोकोत्तर मनोभूम के बावजूद साधारण घर परिवारों की अपनी जीवन शैली और माँ बाप भाई बहन पति पत्नी के बीच के संबंधों की सारी मधुरता और सहजता को समेटे हुए उनमें गूंजी है। ये अखियां अलसानी पिया हो सेज चलो, अथवा कहा पत्नी अपने पति का नाम न लेकर या पति न कहकर उसे अपनी ननद के वीर अर्थात भाई के रूप में संबोधित करती है और अपने मन को खोलती है। आचार्य शुक्ल को कबीर की भक्ति में भी काव्यत्व नजर नहीं आया। विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति पर रीस जाने वाले शुक्ल जी कबीर की वैसी ही प्रशांत गहरी प्रपत्ति मूलक उदात्त अभिव्यक्ति की अनदेखी कर गए। कविता का आखिर वह कौन सा पैमाना है जो विनय पत्रिका पर लागू होकर कबीर की भक्ति पर कविता पर लागू नहीं होता? और वस्तुतः यदि आचार्यों को कबीर में कविता ही नहीं दिखती, काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के चले आते प्रतिमानों के दायरे में कबीर की कविता नहीं आती, तो जरूरत है इस एक नए काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की जो कबीर की भक्ति के आधार पर निर्मित हो। रूढ़िवादी अभिजात पांडित्य की हठधर्मी के चलते ही कभी ब्लैक पोएट्री के रचयिताओं को अपनी एक ब्लैक एस्थेटिस निर्मित करने की दरकार हुई थी, और इसी हठधर्मिता के चलते आज दलित लेखक एक नए सौंदर्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सौंदर्य शास्त्र जो अभिजन समाज की काव्याभिरुचि और सौंदर्याभिरुचि के बजाय साधारण जनता के सौंदर्य बोध भाव बोध भाषा और बोली की नोटिस लेता हुआ सामने आए। कबीर आज गत हैं। जिस नई मनुष्य संस्कृत और मनुष्य धर्म के लिए आजीवन कुदाल लिए हुए वे रास्ता बनाते रहे, अभिशप्त और संघर्षरत रहे, वह आज भी एक सपना ही बनी हुई है। यातनाग्रस्त मनुष्य की जिस पीड़ा से विक्षुब्ध होकर उन्होंने एक न्यायपूर्ण मानवीय सामाजिक संरचना के लिए आवाज उठाई, वह भी प्रतीक्षित है। उनकी संतानें आज भी नारकीय नियत को ही ढो रही हैं, किंतु कबीर के अपने समय और आगे के समयों के लिए सबसे बड़ा प्रमेय यह है कि वह चली आ रही सामाजिक संरचना को भले ही न ढा पाए हों, उसकी इमारत की कुछ ईंटें उन्होंने जरूर खिसकाई हैं, उस पर अपनी कुछ गहरी खरोंचें जरूर लगाई हैं। उन्होंने एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज के सपने को उसकी आकांक्षा कर रहे आदमी की आंखों में जीवित रूप जरूर रखा है, उसे मरने नहीं दिया है। भविष्यवाणियां करना ज्योतिषियों का काम है, किंतु क्या हम आशा नहीं कर सकते कि अगली सदी कबीर की सदी होगी?